وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو جیسا کہ تقریباً آج کل ہر کلاس کے پہلے ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ آخری کلاس میں کیا بات چل رہی تھی، کون بتائے گا؟ زور سے بولا کریں، میں دیسی کی آواز تو مجھے اور آواز آپ کو جس طرح آپس میں کھیل میں بات کرتے ہیں نا، اس طرح سے بات کیا کریں زور سے؟ ہاں، اداس والا واقعہ جو تھا، اچھا ٹھیک ہے، صحیح. اچھا تو ہاں، آخری کلاس میں ہم طائف کا واقعہ پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا جو سفر شروع ہو چکا تھا طائف سے، پھر وہ جو گندے لوگ تھے ادھر کے طائف کے سردار، انہوں نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا اور لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پتھر مارے تھے اور نشانے باندھ باندھ کر کے، ایسے نشانے لگا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بہت کوشش کری کہ وہ پتھروں کے سامنے آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں، لیکن وہ چاروں طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچا سکتے تھے نا، تو ان کو بھی خوب پتھر لگے، ان کا بھی خون نکلنا شروع ہو گیا، سر پھٹ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بچتے بچاتے اس باغ میں پہنچے جو عتبہ اور عتیبہ کا باغ تھا، نہیں عتبہ اور ربیعہ کا باغ تھا، شیبہ بن ربیعہ، دونوں کے باپ کا نام ربیعہ تھا اور ان کا نام تھا عتبہ اور شیبہ. تو وہاں پر عداس والا واقعہ پیش آیا تھا کہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح سے آ کر کے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی ترس آیا. ان کو جو ترس آیا، یعنی ان کو جو دل ان کا نرم ہوا، تو اس کی کوئی وجہ بنی تھی، وہ کس کو یاد ہے کہ ان کا دل نرم ہوا تھا؟ تو جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست دعا کری تھی نا، اللہم انما اشکو بسی وحزنی، ٹھیک ہے، یہ سوری اشکو بسی والی نہیں، تو یہی والی کہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں خالی، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے، تو مجھے بس اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، لوگوں کی ناراضگی کی مجھے پرواہ بالکل بھی نہیں ہے. تو بہت ہی زبردست دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کری تھی اور الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی والی دعا. تو بہرحال پھر ان لوگوں کا دل نرم ہو گیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ عداس اپنے غلام کو بھیجا کھجوروں کا کوشہ لے کر کے، اور اس نے آ کر کے نا نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ہاں انگوروں کا کوشہ، کھجوروں کا کوشہ ہوتا ہے، کھجوروں کا ذرا ڈفرنٹ کوشہ، انگوروں کا کوشہ، میں غلط بول رہا ہوں، مطلب یہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، ٹھیک ہے. ایک اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نا ان انگوروں کو جو کھایا نا، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو عداس کو یہ باتیں بہت عجیب لگیں کہ بھئی یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور یہاں تو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، ٹھیک ہے. عیسائی کو نصرانی بھی کہتے ہیں. نصرانی کیوں کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے عیسائیوں کو نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی تھی، ٹھیک ہے. مدد کو عربی میں نصرت کہتے ہیں، تو مدد کرنے والے کو کی وجہ سے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ واقعہ ہم مزید آگے کمپلیٹ کرنے سے پہلے نا، چند پیچھے کی چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ رہ گئی تھیں، ٹھیک ہے. उनमें से एक ये थी कि जब वो शेबे अबी तालिब का बायकॉट खत्म हुआ था, ठीक है, तो उसी वक्त एक और छोटा वाकया पेश आया था। वो ये था कि सवाल पूछो। नसरानी ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, और शुरू में तो नहीं मानते थे ना, शुरू में जो लोग थे वो तो सिर्फ ईसा अलैहि सलाम की मदद करते थे, ठीक है, तो उनको हवारियून भी कहा गया कुरान के अंदर, है ना, हवारियून का लफ्ज, और उनको इसी वजह से नसारा भी कहा गया, मदद करने वाले। फिर बाद में जाकर के उनको जो जू था, यहूदी था, जिसका नाम पॉल आता है, तो पॉल ने जो है ना फिर उन लोगों को झूठी झूठी बातें बतानी शुरू करी कि ये ईसा अलैहि सलाम जो थे ना, ये तो अल्लाह ताला के बेटे थे और तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, परस्तिश करनी चाहिए। तो फिर उन लोगों ने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी, वरना शुरू में तो ये नहीं करते थे ना, शुरू में तो ये बिल्कुल साफ सुथरे मुसलमान थे। खैर, तो इन्हीं नसरानियों से मुतालिक ना एक और वाकया था। जब शेबे अबी तालिब का वाकया खत्म हुआ और नबी अलैहिस्सलाम और बनू हाशिम शेबे अबी तालिब से बाहर निकल आए, तो उस वक्त ना एक इलाका है सऊदी अरब में, आपने नाम सुना होगा, नजरान का इलाका है, यमन के करीब एक जगह है नजरान, एक है जीजान और एक है नजरान। तो ये नजरान का जो इलाका है ना, यहाँ पर भी उस जमाने में भी ईसाई रहते थे, क्रिश्चियंस, ठीक है, यमन में भी बहुत क्रिश्चियंस रहते थे और यहाँ पर भी क्रिश्चियंस रहते थे। तो नजरान से ना 20 लोग, 20 लोग जो है वो एक ग्रुप बना करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा मिलने के लिए आए। उन तक ये खबर पहुंची थी कि भाई एक साहब आए हुए हैं और वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो वो लोग बाकायदा आप से मिलने के लिए आए। तो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने काबतुल्लाह के बाहर मुलाकात करी और आप ने उनके सामने इस्लाम पेश किया, तो उनको ये बातें बहुत अच्छी लगी। और उनको चूंकि वो भी इल्म रखते थे आसमानी किताबों का, तौरात का, इंजील का, तो उन लोगों ने ना नबी अलैहिस्सलाम की बात को फौरन एक्सेप्ट कर लिया और वो मुसलमान हो गए। जब अबू जहल और तो उस तरह के और बड़े बड़े कुफार थे, उनको पता लगा कि ये मुसलमान हो गए, तो उन्होंने खूब इनको बुरा भला कहा कि तुम लोग तो यहाँ आए थे ताकि अपने कौम को जाकर के इस शख्स के बारे में बताओ कि ये गलत आदमी है, ये बुरी बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नऊज़ुबिल्लाह, तुम तो उल्टा खुद ही जो है वो बेदीन हो गए, अपने दीन को तुमने छोड़ दिया, ये क्या बात हुई भाई। तो इन लोगों ने अबू जहल को जवाब दिया कि तुम हमारी परवाह ना करो, डोंट वरी अबाउट अस, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें पता है कि हमने क्या किया, ठीक है, हमें भी इल्म है, हमने भी किताबें पढ़ी हैं, हमें भी निशानियां मालूम हैं कि आखिरी नबी के अंदर क्या क्या निशानियां होंगी, और वो निशानियां हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देख ली हैं, इस वजह से हम मुसलमान हो गए, ठीक है। तो फिर ये लोग वापस चले गए नजरान मुसलमान होकर के, और अल्लाह ताला ने बाकायदा इन लोगों की तारीफ सूरह मायदा के अंदर बयान फरमाई, ठीक है, कि ये लोग जो है वो ऐसे ऐसे इन्होंने आकर के ईमान कबूल किया। तो ये था एक छोटा वाकया नजरान के ईसाइयों का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात जो आपको शायद बताने रह गई थी वो ये कि इसी टाइम में, जबकि शेबे अबी तालिब का मुहासरा खत्म हो गया था, बायकॉट खत्म हो गया था, राइट, तो ये कौन सा वाला साल चल रहा था, नबुवत का कौन सा वाला साल चल रहा था, कोई यहाँ ऑनलाइन भी बता बताए जरूर भाई। छठे साल में तो एंटर ही नहीं हुए थे, एंटर कौन से वाले साल में हुए थे, शेबे अबी तालिब के अंदर, याद रखा करें ना, लिख लिया करें, फिर उसके बाद एक दफा देख लिया करें, क्लास से पहले बस थोड़ी देर देख लिया करें। हाँ, 10वां साल चल रहा था, ठीक है, एंटर कब हुए थे, 7th ईयर, जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है, ठीक है, 7वें साल में एंटर हुए थे और 10वें साल में, यानी पूरे 3 साल गुजार करके उस घाटी के अंदर से फिर मुसलमान बाहर निकले थे। तो बाहर निकलने के चंद ही दिन के बाद किसका इंतकाल हो गया था, सबसे पहले किसका, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हो गया था, ठीक है, और उनके बाद फिर हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु का जब इंतकाल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बाकायदा दफन किया उसी कब्रिस्तान में जिसको के हुजूम का कब्रिस्तान भी कहते हैं, और आज उस कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल मुअल्ला, ठीक है, ये मक्का मुकरमा के अंदर जो उस जमाने का कब्रिस्तान है उसको जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, और मदीना मुनव्वरा में उस जमाने का जो कब्रिस्तान है उसको जन्नतुल बकी, ठीक है, बकी का कब्रिस्तान, जन्नतुल बकी। जन्नत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाग है गोया के, इसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा फूल रहते हैं, ठीक है, सहाबा कराम, ईमान वाले, अल्लाह ताला के दोस्त, वली। जो लोग मुसलमान हो गए थे, दजान वाले, ये कौन लोग थे? नाम तो उनका नहीं पता कौन लोग थे, लेकिन ये पहले ईसाई थे, फिर ये आके मुसलमान हो गए, फिर ये वापस चले गए थे दजान में। बस इनका इतना ही है क्लास किताब के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो जन्नतुल मुअल्ला का जो कब्रिस्तान था ना, इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जाकर के सदियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को दफन फरमाया, बाकायदा कब्र खोदी खोदी, और सदियतान को लेकर के नबी अलैहिस्सलाम कब्र में खुद उतरे, जैसे कि बॉडी को लेकर के उतरते हैं, फिर उनको वहां पे रखा और फिर ऊपर से मिट्टी लोगों ने डाल दी, ठीक है। सदियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु की कब्र आज भी मौजूद है, पता है लोगों को कि वो कब्र कहाँ पर है, अगरचे के बाउंड्रीज उन्होंने ऐसी बना दी कि अब आप आसानी से एंटर नहीं हो सकते कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा, सदियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु के साथ तो ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद जाकर के दफन किया, नमाज जनाजा उस वक्त तक नहीं थी, ठीक है, तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई उनकी। अबू तालिब के साथ क्या हुआ? अबू तालिब का भी चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया, लेकिन अबू तालिब जो थे ये मुसलमान नहीं थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को इनको इसको इनसे बहुत मोहब्बत थी, चचा थे, बहुत ख्याल रखते थे, मदद करते थे, लेकिन चूंकि ये मुसलमान नहीं थे ना, तो अब इनका इंतकाल कुफर की हालत में हुआ था, शिर्क की हालत में हुआ था, ठीक है। तो नबी के लिए ये मुनासिब नहीं था कि किसी मुशरिक को जाकर के कब्र में दफन किया जाए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना इनके बेटे अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, जुल्ला बिन उबई का मामला बिल्कुल डिफरेंट था, वो मुनाफिक था, ठीक है, तो वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, और उसके इस्तगफार के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं खूब इस्तगफार करूंगा इसके लिए, फिर बाद में अल्लाह ताला ने मना कर दिया, ठीक है। इनके लिए जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बेटे अली रज़ियल्लाहु को कहा कि तुम जाकर के अपने बाप को दफना करके आ जाओ, ठीक है। तो अली रज़ियल्लाहु जो है वो गए, उन्होंने इनको दफनाया, और नमाज जनाजा तो वैसे भी नहीं थी उस वक्त, तो नमाज जनाजा तो वैसे भी मुसलमानों में पढ़ी जाती है, लेकिन उस वक्त तो थी ही नहीं, ठीक है। फिर जब अली बिन अबी तालिब जब वापस आए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम गुस्ल कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम एक मुशरिक को दफन करके आए हो, तुम अब गुस्ल कर लो, ठीक है। तो अबू तालिब जो है वो मुसलमान चूंकि नहीं हुए थे, तो इस वजह से उनका ये मामला हुआ, और इन्होंने जो भी पैसे वैसे माल दौलत वगैरह कुछ छोड़ा था, जो भी कुछ उनके पीछे बचा था ना, तो उसको भी इनकी औलाद में जो डिवाइड किया गया ना, क्योंकि जब किसी बाप का इंतकाल होता है तो उनकी मीरास जो होती है उनकी औलाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बेटों में और बेटियों में, तो इनकी जो मीरास थी वो डिस्ट्रीब्यूट जो है ना वो इनके बेटों में सब में नहीं की गई। इनके चार बेटे थे, तालिब जिसकी वजह से इनका नाम अबू तालिब था, और अकील, और जाफर, और अली। तो जाफर और अली चूंकि मुसलमान हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने ये लॉ बनाई है, ये शरीयत बनाई है कि काफिर बाप की मीरास मुसलमान औलाद में तकसीम नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अली और जाफर को इनकी मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। इनकी मीरास किस में तकसीम हुई? तालिब और अकील में, सही है। तो ये बातें चंद थी अबू तालिब के बारे में। फिर तो काफिर को भी, उसके जो बच्चे काफिर है ना उनको भी मीरास नहीं मिलेगी, ठीक है। मुसलमान की मीरास मीरास को मुसलमान की मीरास उसकी मुसलमान औलाद को मिलेगी। तो मीरास का टॉपिक शुरू हो गया है, बहुत सारी इसके अंदर तफसील है, ठीक है, लेकिन आपके सवाल के जवाब देकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि अगर कोई भी नहीं हो ना उसकी औलाद में से, तो फिर उसकी जो मीरास है वो फिर जो हुकूमत होती है इस्लामी हुकूमत, उसकी जो ट्रेजरी होती है ना, बैतुल माल जिसको कहते हैं, बैतुल माल के अंदर जमा करवा दी जाती है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ अबू तालिब, ये पहले भी पूछा था और मैं पहले जो उसके बाद भूल गया कि एग्जैक्टली नाम इनका क्या था, वो नहीं पढ़ा भी था हालांकि, याद नहीं है बिल्कुल, जोर से बोल रहे हैं यार। अब बैतुलमाल नहीं होता, हाँ अब चूंकि बहुत कम जगहों पर इस्लामी हुकूमत या मुसलमानों की हुकूमत है, तो इस वजह से अब बैतुलमाल अगर कहीं पर नहीं है तो फिर वो किसी मुसलमानों के फंड के अंदर जमा कर दिया जाएगा जहाँ से मुसलमानों को फायदा होता है। ठीक है, कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस किस्म का ग्रुप हो जो कि मुसलमानों के ऊपर खर्च करता हो तो उनके अंदर, जैसे जिसको चैरिटी कह दिया जाता है आजकल के दौर में। एनीवे, अच्छा जी, ये हदीयतुल कुबरा के इंतकाल के बारे में हुआ कि उनको हुजून के कब्रिस्तान में दफन किया गया, अबू तालिब का भी हुआ। फिर अच्छा, हदीयतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल किस महीने में हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए। नहीं, आमुल हुजून तो उस साल का नाम दिया गया ना कि ये गम वाला साल है, महीना कौन सा था? महीना था रमजानुल मुबारक का महीना। ठीक है, रमजानुल मुबारक के महीने में हदीयतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, तो रमजानुल मुबारक के गुजरने के बाद जब शव्वाल का महीना आता है, राइट, पहली शव्वाल को ईद होती है ईद उल फितर, तो रमजान के बाद शव्वाल का महीना आया ना, तो शव्वाल का महीना था कि जिसके अंदर फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ का भी सफर किया। ताइफ का सफर जो हमने पिछली क्लास में तफसील के साथ डिस्कस किया था, वो 10 नबवी वाला साल था जिसको आमुल हुजन भी कहते हैं, और महीना कौन सा था? शव्वाल का महीना। ठीक है, शव्वाल के महीने में, अच्छा शव्वाल के महीने में एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसको हम बहुत बड़ा वाकया कहते हैं, वो क्या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ किन के साथ? हजरत सौदा, नहीं सौदा के साथ नहीं, बल्कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। ठीक है, इस निकाह की तफसीलात उम्मीद है कि आगे जाकर के शायद आएंगी किताब के अंदर, लेकिन नहीं पता ना, ये मैं आपको अभी तो बताया कि अबू तालिब का असल नाम याद नहीं है। ठीक है, सॉरी, तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हो गया। ठीक है, और निकाह की तफसील इंशाल्लाह बाद में। अब जो है ना, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। पहला दौर जो था वो था हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, जिसके जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 ईयर्स गुजारे, जवानी के सारे साल हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ गुजारे, और उनकी उम्र नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी ज्यादा थी? 15 साल ज्यादा थी, 15 ईयर्स ओल्डर देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सिद्दीका क्यों कहते हैं? सिद्दीका क्यों कहते हैं? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का लकब इनको, किसी को याद है वाकया इसके तहत? सिद्दीका का वाकया नहीं है ये, तो एक तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी बेटी थी, उनको सिद्दीका लकब दिया गया, या तो ये इस वजह से, या ये कि एक वाकया हुआ था जो जिसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस वाकये के अंदर, तो उसके बाद इनको सिद्दीका का लकब दिया गया, या एक वजह इसकी ये हो सकती है कि इन्होंने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातें उम्मत को बताई, बहुत सारी हदीसें। नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता कुछ वाक्य, तो बहुत सारी हदीसें इन्होंने बताई, तो आप ससरम की सच बातों को आगे प्रोवाइड करना जो है, यानी आगे नरेट करना, उसके लिए इंतहाई सच की जरूरत होती है, इंतहाई सिद्क की जरूरत होती है। अबू बकर, अबू तालिब नेम वाज इमरान, अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली, तो इन्होंने भी मोस्ट प्रॉब्ली के साथ कमेंट में लिखा है कि उनका नाम शायद इमरान था। अच्छा, ओके, तो ये हो गया फिर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह का मामला। ठीक है, अच्छा, तकरीबन इसी टाइम पर ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी शादी का भी अल्लाह ताला ने इंतजाम करवाया, बल्कि दूसरी नहीं बनेगी, तीसरी बनेगी। पहली शादी तो हदीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुई, ठीक है ना, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरी शादी जो है वो अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ करवाई, जो कि शव्वाल के महीने में हो गई। ठीक है, अच्छा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शादी की वजह क्या, कोई बता सकता है वजह क्या थी? यानी अगर आप 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 हिकमत, विजडम बिहाइंड दिस मैरिज, ठीक है, विजडम बिहाइंड, बिकॉज अब जो शादियां शुरू हो रही हैं ना, अब शादियां जो हैं वो हो रही हैं आप सरसरम की नबूवत की हालत में। जो पहले शादी हुई थी वो किस हालत में हुई थी? उस वक्त नबी सलाम को नबूवत नहीं मिली थी, है ना। आप सरसरम को नबी बना करके खड़ा कब किया गया? 40 इयर्स की एज में ना। शादी कब हुई थी पहली वाली, किसी को याद है? 35 में तो नहीं हुई थी, उम्मे सलमा? नहीं, उम्मे सलमा 25 इयर्स में ना, 25 इयर्स, 25 साल की उम्र के अंदर शादी हुई थी। तो उस वक्त आप सरसरम नबी नहीं बने थे, ठीक है। लेकिन अब 50 साल के हो चुके थे नबी सलाम, राइट, और अब नबूवत को गुजरे यानी होए हुए भी 10 साल हो चुके थे। तो अब जो है ना आप सरसरम की पूरी की पूरी लाइक लाइफ जो होती है वो चेंज हो चुकी थी। एक बहुत बल्कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि दुनिया में किसी को दी जा सकती है, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दे दी थी, ठीक है, कि आपने मेरे दीन के आखिरी नबी के तौर पर अपना रोल प्ले करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे बड़ी और कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि जी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, यानी सबसे बड़ी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों? उसके उसके हाथ में जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स का बटन होता है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का जो 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 फायरिंग बटन होता है ना वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, वो दबा दे तो फिर खत्म, ठीक है, सब कुछ खत्म, उसके बाद फिर भाग करके कहीं और जाके रहना पड़ेगा। लेकिन वो उसकी कोई हैसियत नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नजदीक तो हमारी निगाहों में कुछ नहीं होती, ठीक है। हमारी निगाहों में जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नबी अलैहि सलाम की, ठीक है। तो आप सरसरम जो है, तो अब उनकी जो लाइफ थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करवाया, ठीक है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की निकाह की बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी हिकमत क्या थी कि आयशा सिद्दीका जो थी ना, ये थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्ह की बेटी, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी। तो जब इनके साथ नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया ना, तो इससे क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का जो घर था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनल लाइफ थी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो पर्सनल लाइफ थी, उनका जो घर था, इन दोनों के दरमियान एक रिश्तेदारी का ताल्लुक बन गया। इससे पहले रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था, इससे पहले क्या ताल्लुक था? दोस्ती का ताल्लुक, ठीक है ना। दोस्ती का ताल्लुक बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, बहुत अच्छी बात होती है अगर आपके नेक दोस्त हों, अगर आपके अच्छे दोस्त हों, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन दोस्ती के ताल्लुक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ताल्लुक, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप क्या होती है? रिश्तेदारी का ताल्लुक होता है, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक जो है, जैसा कि आपको पता है, ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा बनना था, राइट, नबी अलैहिस्सलाम का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में बनना था। आप सरसरम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप सरसरम को अल्लाह ताला ने देके भेजा था वो किसने टेक ओवर करनी थी? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने टेक ओवर करनी थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, है ना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसके लिए जो है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक जो है वो मजीद गहरा होने की जरूरत थी। तो अल्लाह ताला ने ना उनके घर के साथ फिर नबी अलैहिस्सलाम का रिश्तेदारी वाला ताल्लुक बना दिया। कौन सी वाली रिश्तेदारी बनी? ये नबी अलैहिस्सलाम के अबू बकर सिद्दीक क्या बन गए? ससुर बन गए, राइट, फादर इन लॉ बन गए, है ना। अच्छा, दूसरे खलीफा कौन थे? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जब अबू बकर सिद्दीक ने इस दुनिया से चले जाना था तो फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनना था। उनकी बेटी का क्या नाम था? हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी करवाई बाद में, ठीक है। तो जो चार खलीफा हैं, कितने चार खलीफा कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे कौन? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। चारों के साथ अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी का ताल्लुक बनवा दिया, ठीक है। फर्स्ट टू जो थे वो नबी अलैहिस्सलाम के ससुर बन गए, और जो लास्ट टू जो थे वो क्या बन गए? नबी अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए, यानी सन्स इन लॉ बन गए, ठीक है ना। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तो डबल सन इन लॉ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی ہوئی، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروائی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی شادی آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کروائی، ٹھیک ہے. تو جتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے، اتنا گہرا اور پکا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کے لیے کسی انٹرپریٹر کی ضرورت ہے، کون بتائے گا کیا بول رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے چار قد نہیں بتایا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی، یعنی میرے خلاف میرے خلفاء ہوں گے جو مجھ سے ٹیک اوور کریں گے کام کو، میرے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، وہ خلافت راشدہ کہلائے گی، اور وہ دنیا کے اندر 30 ایئرس تک رہے گی، 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے چار نہیں بتائے تھے، اور نبی علیہ السلام نے کسی کا بھی نام نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب امت نے ان چاروں کو ایک کے بعد ایک چوز کر لیا اپنے خلیفہ کے طور پر، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو اس وقت تک 30 ایئرس پورے ہو چکے تھے، تو امت نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ، یعنی امت کے جو علماء کرام تھے اس وقت، صحابہ کرام وغیرہ اور بڑے بڑے علماء، ان سب نے پھر کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو 30 سال کا بتایا تھا نا، خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ چار خلفاء تھے یہی خلافت راشدہ والے تھے، اور ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے تو پھر وہ بھی نیک ہوں گے، وہ بھی اچھے کام کریں گے، لیکن خلافت راشدہ میں وہ چار نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے. بہرحال تو نام نہیں بتائے تھے. اچھا یہاں پہ کسی نے کہا سید الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نام میں کبریٰ کیوں ہے؟ کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی، سب سے افضل، ٹھیک ہے، سب سے یعنی سینئر، ان کو عربی میں کبریٰ کہتے ہیں. جیسے اکبر تو آپ نے سنا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو کبریٰ جو ہے وہ اسی کا فیمینن فارم ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کثیر ہے کبریٰ، تو سب سے بڑی عورت، یعنی تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو حافظ ابن حجر، المتحرف نیم واز عبد مناف بن عبد المطلب. اچھا عبد مناف، حافظ حجر ابن حجر الاسقلانی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. روافظ فالسلی کلیم دیٹ ہز نیم واز عمران. اچھا ٹو فٹ ہم انٹو ویریس آیات ڈسکرائبنگ آل عمران. اچھا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ روافظ کا کلیم ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ عمران تھا، لیکن وہ اصل میں نہیں تھا، ٹھیک. اچھا اس کے بعد ایک اور بات کیا تھی کہ ہاں اب آتے ہیں واپس طائف کے سفر کے اوپر، ٹھیک ہے. تو طائف کے اندر جو کچھ ہوا، پھر نبی علیہ السلام واپس گئے، باغ کے اندر بیٹھے، باغ سے پھر نکلے، پھر اب واپس جو ہے وہ جب جا رہے تھے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تھا، ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تھا قرن ثعلب. ثعلب رومی کو کہتے ہیں ثعلب، تو خیر اس جگہ کا نام تھا قرن ثعلب. قرن بھی ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جیسے دو دو سینگ ٹائپ کی چیز ہو، جیسے بکرے کے دو سینگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی قرن کہتے ہیں، جیسے ذوالقرنین، سینگ کو قرن کہتے ہیں، ٹھیک. تو اینی وے کوئی ایسی جگہ تھی، فار ایگزامپل پتہ نہیں وہ وہاں پہ کوئی پہاڑ ایسا ہوگا اس طرح سے جیسے سینگ کی طرح سے پہاڑ بنا ہوا ہوگا، خیر اس جگہ کا نام تھا قرن ثعلب. تو نبی علیہ السلام واپسی کے سفر میں جب قرن ثعلب پہ پہنچے نا، تو اس وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا. وہ کیا ہوا کہ آسمان کے اوپر کچھ بادل تھے، ٹھیک ہے، جس کو بدری بھی کہتے ہیں اردو کے اندر. تو اس بدری میں نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو نظر آئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اوپر نظر آئے بدری کے اندر. وہ اپنے اصل فارم میں نہیں تھے اس وقت، بلکہ جس فارم میں آتے تھے اسی نارمل فارم میں تھے. تو نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا ابوبکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने देखा कि ताइफ के लोगों ने आपके साथ क्या किया है, सही है, आपको पत्थर मारे हैं, आपको बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ पहुंचाई है, तो अब मैं ना आपके पास आया हूं पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर के। ठीक है, पहाड़ों का जो फरिश्ता है ना, तो वो क्या है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की टीम्स बनाई, ठीक है ना, और हर टीम का एक टीम लीडर बनाया। ठीक है, जिस तरह ऑफिसेस के अंदर होता है टीम्स होती हैं, आपके स्कूल्स के अंदर भी टीम्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे कुछ लड़के होंगे, बच्चे होंगे, और उसका किसी को टीम लीडर बना देते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी ना फरिश्तों का सिस्टम ऐसे ही बनाया है कि टीम्स और हर टीम का एक टीम लीडर। ठीक है, तो एक बहुत बड़े फरिश्ते वो हैं मौत के फरिश्ते, जिनका नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है ना, ये अकेले नहीं लोगों की जान निकालते, बल्कि इनको अल्लाह ताला ने पूरी टीम लेकर के भेजा। ठीक है ना, तो इनकी इनकी टीम जो है ना, वो पूरी इनके साथ आती है जब किसी की जान निकालनी होती। इज़राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक काम करते हैं कि इंसान के अंदर अपना जो जो भी उनका हाथ, रूहानी हाथ वगैरह कुछ भी, ठीक है, वो अंदर डाल करके उसकी रूह को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, बाहर निकालने के बाद जो है ना, फिर बाकी काम वो नहीं करते, बाकी काम कौन करता है, उनकी टीम करती है। ठीक है, तो वो ना फिर उनकी टीम के जो फरिश्ते आए हुए होते हैं, मौत की फरिश्ते की टीम, वो उनसे उस रूह को ले लेते हैं, और फिर उस रूह को बाकी काम जो है वो बाकी फरिश्ते करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बारिश बरसाने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक टीम बनाई हुई है। ठीक है, इसराफील मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो बारिश बरसाने वाली टीम के मैनेजर साहब है, टीम लीडर है। ठीक है, तो उसी तरीके से ना अल्लाह ताला ने दूसरे कामों के लिए भी फरिश्तों की टीम बनाई हुई। ठीक है, अब पहाड़ों को आगे पीछे करना है, उनके अंदर कुछ हिलाना है, जिसकी वजह से फिर जलजले आ जाते हैं। तो अर्थ के अंदर पहाड़ों की प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स उनको कहते हैं, जमीन के अंदर बहुत गहरी अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो वो जो प्लेट्स होती है ना, वो अपनी जगह पर फिक्स होती हैं। जलजला कब आता है, जब वो प्लेट्स में से कोई प्लेट जो होती है ना, वो थोड़ी सी हिल जाती है। वो जो हिलती है ना, तो इसकी वजह से ऊपर जो उसके पहाड़ होते हैं, पूरा पहाड़ों का सिलसिला भी कभी होता है, तो वो पूरा का पूरा जो होता है ना, वो शेक होना शुरू हो जाता है, और उससे फिर जमीन का वो जो एरिया होता है जो कि उससे कनेक्टेड होता है, उसके अंदर जलजला आ जाता है। ठीक है, तो पहाड़ों के फरिश्तों का इस किस्म के काम होते हैं, पहाड़ों को हिलाना, पहाड़ों के वगैरह जो भी होते होंगे। तो पहाड़ों के फरिश्ते ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम से फिर बात करी कि मैं मलिकुल जिबाल हूं। ठीक है, मलकुल जिबाल, मलक हूं, मलिक नहीं, मलिक तो बादशाह को कहते हैं, मलक जो है वो फरिश्तों को कहते हैं। तो ये पहाड़ जो है ना, ये मेरे कंट्रोल में है, अल्लाह ताला ने मुझे इनके ऊपर कंट्रोल दिया है कि जो करना है तो तुम करोगे, तो आप जो चाहे मुझे हुक्म दें। अगर आप हुक्म दें ना कि ये जो ताइफ के लोग हैं, जिन्होंने आपको पत्थरों से मारा है और इतना आपको बुरी तरीके से डील किया है, तो अगर आप मुझे हुक्म दें ना, तो ये जो ताइफ के लोग इस वक्त आबाद है ना, ये इन पहाड़ों के बीच में रहते हैं। आप कभी गए हदा, ताइफ, ताइफ में जब आप रियाज से जाते हैं ना, अगर ड्राइव करके, तो पहले तो बिल्कुल फ्लैट लैंड नजर आता है, बिल्कुल प्लेन, जैसे रियाज है उसी तरह से ताइफ भी नजर आता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और आगे जाएं, तो फिर वो ताइफ की पहाड़ियां शुरू हो जाती है, उस जगह को हदा कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ना, उस हदा के इलाके में ये लोग रहते थे। ठीक है, और हदा जो है ना, इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन, पूरा पहाड़ ही पहाड़। ठीक है, अगर आप कभी मक्का मुकरमा में गए हो ड्राइव करके हदा के रास्ते से, तो फिर आपको उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहां पे किसी ने वो बंदर भी बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे बंदर रहते हैं वहां पे, जो है वो चेयर लिफ्ट भी है, और खूब सारे जो है उन्होंने एंटरटेनमेंट पार्क्स बनाए हुए हैं, होटल्स बनाए हुए हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ताइफ जो है ना, वो वहीं पर था उन पहाड़ों के बीच में। तो उस पहाड़ों के फरिश्ते ने आके कहा कि अगर आप मुझे हुक्म देना, तो मैं ना इन पहाड़ों को, जिनके दरमियान ये लोग रहते हैं, मैं उन पहाड़ों को ना यानी मिला दूं, उनको ऐसे उसके अंदर जलजला आए कि पहाड़ जो है वो आपस में मिल जाएं, या पहाड़ टूट करके उनके पत्थर जो है ना वो इन लोगों की बस्तियों के ऊपर गिरने शुरू हो जाएं और ये सारे के सारे मर के खत्म हो जाएं। ठीक है, आप में से कुछ तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, लेकिन 2005, 2005 राइट, तो उसमें ना एक बहुत बड़ा जलजला आया था पाकिस्तान के और इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज के, सही, जहां पर कश्मीर है, जहां पर इस्लामाबाद है पाकिस्तान में, राइट, इंडियन कश्मीर भी उधर ही लगता है, पाकिस्तानी साइड उधर कश्मीर भी उधर ही लगता है, और वहां पर वो भी है पठानों का जो इलाका जो कहलाता है खैबर पख्तूनख्वा, सरहद भी जिसको कहते हैं। वहां पर जो जलजला आया ना, तो वो इतना शदीद जलजला था कि वो भी पहाड़ी इलाका है पूरा, ठीक है, तो बहुत सारे पहाड़ जो है ना वो आपस में मिल गए, और ऐसे मिले कि उनके बीच में जो लोग रहते थे उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। हमारे एक जानने वाले हजरत कासिम मंसूर, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वो ना उसी जगह के रहने वाले हैं एबटाबाद वगैरह के ना, जहां पर कि ये जलजला आया था। तो वो जब जलजला आने के, वो रहते थे इस्लामाबाद में उन दिनों में, लेकिन उनकी फैमिली सारी की सारी जो है वो वहां की रहने वाली है एबटाबाद वगैरह की। तो वो बताते हैं कि जब वो जलजले के बाद फिर अपने गांव गए ना कि भाई मैं देखूं तो सही कि मेरे गांव के लोग जो है वो कहाँ गए, कैसे हैं, किस हाल में हैं, तो वो वहां पे जाकर के जब वो उस जगह के करीब पहुंचे तो कहते हैं कि मेरे तो समझ में ही नहीं आया कि ये जगह क्या हो गई, मैं तो पहचान ही नहीं सका कि मैं कहाँ आ गया हूं, क्योंकि वहां जहां पे मेरा गांव था वहां पे अब कुछ भी नहीं था, और पहाड़ जो है ना वो ऐसे अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके थे कि जिसकी वजह से वो गांव का एरिया ही पूरा का पूरा कवर हो चुका था, वहां पहाड़ ही पहाड़ था, यानी बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई थी उस जगह की, ठीक है, तो उनके जो है ना वो पूरा का पूरा गांव गायब खत्म, और उनकी अपनी फैमिली के जो एक्सटेंडेड फैमिली, जाहिर है गांव वाले जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, 300 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली पेरिश्ड खत्म, ठीक है। तो जलजला जब बड़ा जलजला आता है तो ऐसा भी होता है, सही है। तो इसने कहा पहाड़ के फरिश्ते ने, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन लोगों को जो है ना वो पहाड़ों के दरमियान क्रश करके खत्म कर दूं, लेकिन नबी रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे ये उम्मीद है कि इन लोगों की औलादों में ऐसे लोग अल्लाह ताला पैदा करेगा कि जो कि दीन इस्लाम को कबूल करेंगे और फिर वो लोग दीन इस्लाम की मदद करेंगे, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। हालांकि नबी रसूलुल्लाह के पास वो परफेक्ट चांस था, बेहतरीन मौका था बदला लेने का, क्योंकि इन लोगों ने तो नबी रसूलुल्लाह को बहुत बहुत बुरा किया था आपसे सलम के साथ, और इतनी अथॉरिटी थी आपसे सलम के पास, पहाड़ों का फरिश्ता करके कह रहा है कि मैं, आप कहें बस बताएं, मैं तो उन लोगों को खत्म ही कर दूंगा। नहीं, मोहम्मद अल फातिह तो बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम का जो है वो एक्चुअली है, बिकॉज ये लोग सकीफ के लोग थे और मोहम्मद बिन कासिम की जो फैमिली थी ना वो सकफी, ठीक है, ये हज्जाज बिन यूसुफ सकफी, ठीक है ना, और मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हज्जाज बिन यूसुफ के ही भतीजे थे या भांजे थे, ठीक है। तो हाँ सकफी फैमिली से मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने विवाह करके सिंध के ऊपर हमला किया था और फिर यहाँ से मुसलमान इंडिया के अंदर सिंध के रास्ते से जो दाखिल हुए थे, तो नबी रसूल जी पैदा हुए थे, ताइफ पैदा भी हुए थे, सही, माशाल्लाह सही। तो नबी रसूल ने फरमाया ना कि मुझे उम्मीद है कि इनकी औलादों में अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करेगा जो कि दीन की मदद करेंगे, तो एग्जैक्टली फिर मोहम्मद बिन कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा काम किया दीन की मदद का। वैसे तो हिजाज बिन यूसुफ जो था वो था तो बड़ा जालिम, लेकिन अल्लाह ने काम उससे भी बड़ा लिया, कौन सा बड़ा काम किया था अल्लाह ताला ने हिजाज बिन यूसुफ से, कुरान के अंदर एराब लगवाए थे, ठीक है ना, जेर जबर पेश जो आज हम देखते हैं ना ये पहले नहीं होते थे कुरान के अंदर, क्योंकि अरबों को तो जरूरत ही नहीं थी जेर जबर पेश की, उनको तो पता है कि भाई कैसे, आप उर्दू के अंदर जेर जबर पेश लगाते हैं, जिन लोगों को उर्दू पढ़नी आती है उम्मीद है कि कुछ लोगों ने पढ़नी शुरू करी होगी, एक दिन बड़ा डाटा होता है इसके ऊपर याद है, तो उर्दू देखें तो उर्दू के अंदर जेर जबर पेश नहीं लगे होते, क्योंकि हम तो हमें पता है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसी तरह अरबों को पता है कि अरबी वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो जब नॉन अरब्स मुसलमान होने शुरू हुए ना तो उनको तो नहीं पता था कि अरबी वर्ड्स को कैसे जो है वो उनकी हिज्जा करनी है, तो फिर उनको इस तरह के एराब यानी जिनको ये उर्दू वोकल साउंड्स कहते हैं, तो ये जो है ना फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे, जो कि बहुत बड़ी खिदमत थी कुरान की। ठीक है, तो इसने भी कुरान की खिदमत करी, दीन की खिदमत करी, और मोहम्मद बिन कासिम ने भी खिदमत करी। अच्छा, ताइफ का सफर फिर खत्म हुआ और ये वाला वाकया भी खत्म हो गया, वो होया कि अब जो है वो ताइफ का खत्म का सफर जो है वो मुकम्मल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ भी कर दिया और इनको यानी पहाड़ के फरिश्ते ने जो आकर के कहा था प्रपोजल, उसको भी इनकार कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का मुकर्रमा की तरफ मजीद आगे बढ़े। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे गए तो एक जगह थी, जहां पर फजर का वक्त हो गया। ठीक है, अच्छा खैर उस जगह का नाम भी जरा मुश्किल सा ही था, इस किताब में तो लिखा हुआ भी नहीं है। नखला का मुकाम था, नखला। ठीक है, नखला का मुकाम पे जब आप पहुंचे ना तो उस वक्त फजर का वक्त हो गया था, तो आप ने फजर की नमाज पढ़ाई और जाहिर है जैद बिन हारिसा जो थे वो आप के साथ थे, तो जमात की नमाज हुई, जोर आवाज से आप ने कुरान शरीफ की तिलावत करी। तो उस वक्त जो है ना वहां पर जिन्नों का एक ग्रुप मौजूद था। ठीक है, जिन एक किताब में लिखा है, किसी किताब में लिखा है 7 जिन थे और किसी और किताबों में लिखा हुआ है कि 9 जिन थे। ठीक है, ये जिन वहां कर क्या रहे थे? पार्टी कर रहे थे, बारबेक्यू करने के लिए आए थे, क्या सफर कर रहे थे? हाँ सफर तो यकीनन कर रहे थे, लेकिन क्यों सफर कर रहे थे, क्या करने आए थे आप? जी आप सम की तिलावत सुनने के लिए आए थे? नहीं नहीं नहीं, इनको पता नहीं था आप सम के बारे में, अब तक इनको तो पता ही नहीं था। तो ये क्या कर रहे थे? एक पहले भी शायद बात हुई है इस टॉपिक के ऊपर, नहीं सॉरी यहाँ पे कुछ पढ़ लिया मैं। तो ये जिन जो है ना यहाँ पर एक खास पर्पस से यानी सफर कर रहे थे और सफर के दौरान यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरे थे, खाने वाने खाने के लिए कुछ। तो ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि आपको पता है कि जब नबी रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी ना, ठीक है, तो आप सरम के नबी बनने से पहले जो जिन्स थे उनके पास आसमानों का एक्सेस था। एक्सेस का होने का मतलब यह है कि वो जिन जो थे ना वो आसमानों के अंदर चले जाया करते थे। ठीक है, अब जाने अब तो मैं शुरू कर दूंगा उसका। तो वो जिन जो है ना वो आसमानों के अंदर चले जाते थे। आसमानों के अंदर क्या होता था? आसमानों के अंदर कौन रहते हैं? फरिश्ते रहते हैं। ठीक है ना, आसमान जो है ना ये फरिश्तों के ऑफिसेज हैं, फरिश्तों के ऑफिसेज हैं, फरिश्तों के घर नहीं है बल्कि ऑफिसेज हैं। क्यों घर क्यों नहीं है भाई? घर में और ऑफिस में क्या फर्क होता है? हाँ, घर में और ऑफिस में फर्क जो है ना वो ये होता है, चाहे वो होम ऑफिस हो चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, फर्क ये होता है कि घर के अंदर जो होता है ना, पहली बात तो ये कि आपकी फैमिली रहती है। ठीक है, फरिश्तों की कोई फैमिली है? नहीं, फरिश्तों की कोई फैमिली नहीं है। ठीक है, घर के अंदर जो है वो आपका बेडरूम होता है, सही, जहां पे कि आप लेटते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, फरिश्तों को आराम करने की कोई जरूरत है? फरिश्तों को नींद आती है, फरिश्ते सोते हैं? नहीं, फरिश्ते तो सोते ही नहीं है। ठीक है ना, घर के अंदर, अब मॉडर्न जो घर 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो बनने चाहिए उनके अंदर बाथरूम्स भी होते हैं। ठीक है, तो बाथरूम भी घर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो फरिश्तों को तो बाथरूम जाने की भी कोई जरूरत नहीं होती है ना भाई। और ड्राइंग रूम होते हैं जहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं, तो आप गेस्ट के साथ बैठते हैं, उनको चाय शाय पिलाते हैं, उनके साथ बातें बातें करते हैं, तो फरिश्तों के यहाँ तो गेस्ट का भी कोई, तो इस वजह से ना फरिश्तों का कोई घर नहीं होता, क्योंकि ना तो उनको सोने की जरूरत है, ना उनको जो है वो मेहमानों से बात करने की जरूरत है, ना उनको किसी और चीज की जरूरत है। तो फरिश्ते फिर करते क्या है? ना उनकी फैमिली होती है, तो फरिश्ते करते क्या है? फरिश्तों को अल्लाह ने क्यों बनाया भाई? आराम करने के लिए नहीं बनाया, बातचीत करने के लिए नहीं बनाया खाली, बल्कि काम करने के लिए बनाया। और काम बंदा किधर करता है, घर में नहीं करता, घर में तो आराम करता है, घर के बाहर निकल के काम करते हैं, ठीक है। बाहर वाले काम भी होते हैं बहुत सारे, औरतें घर के अंदर काम करती हैं, ठीक है, लेकिन वो काम भी जो है वो घर वाले काम होते हैं, घर से रिलेटेड होते हैं। तो काम के लिए जो है ना, वो बेसिकली जो जगह होती है वो दफ्तर होता है। ये और बात है कि आपकी अम्मी का दफ्तर जो है वो अगर किचन है, ठीक है, वो किचन में काम करती है तो उनका ऑफिस हो गया, ठीक है। तो फरिश्तों के काम की जगह जो है ना वो है आसमान, ठीक है। आसमानों के अंदर वो, बल्कि काम भी क्या करते हैं, आसमानों के अंदर वो सारा काम नहीं करते, काम का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो आसमानों में करते हैं। वो कौन सा? आप खामोश बैठे हैं अभी, कुछ बोले? तो ये तो बताएंगे आप, वैसे फरिश्ते आसमानों में कौन सा वाला काम करते हैं? सारा काम वो आसमानों में कर लेते हैं अपना, रिकॉर्ड कीपिंग। वैसे अच्छा जवाब दिया, रिकॉर्ड कीपिंग भी कर, एग्जैक्टली प्लानिंग वाला काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आपको कोई काम दिया जाता है ना, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट जब आपको असाइन किया जाता है, तो जो अकलमंद लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, वो उस प्रोजेक्ट की पहले प्लानिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं उसके ऊपर कि जी हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे जा करके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है आसमानों के अंदर, कि अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म आता है ना, अल्लाह ताला की कुछ किसी किस्म की, अल्लाह बेहतर जानता है कैसा होता है, लेकिन अल्लाह ताला की आवाज आती है, ठीक है। ये जो फरिश्ते होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला की आवाज आती है कि जा करके ये वाला काम करो, ठीक है। तो कुरान की कुछ आयात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आयात भी आपके सामने उम्मीद है रखेंगे। तो उसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि जब फरिश्तों को अल्लाह ताला की आवाज आती है कि तुम जाकर के ये वाला काम करो, तो अल्लाह ताला की आवाज में इतनी ज्यादा हैबत होती है, इतनी ज्यादा उस यानी अजीब और बड़ी आवाज होती है वो, कि फरिश्ते उस आवाज को सुन करके ऐसे करके उनका दिमाग जो है ना यूं करके घूम जाता है, ठीक है। उनका दिमाग जो है ना वो ऐसे करके लाइक लाइक क्या कहेंगे उसको, स्प्रिंग कर जाता है या स्विंग कर जाता है, ठीक है। और वो फरिश्ते जो है वो घूम करके बेहोश हो जाते हैं, यानी वो अल्लाह ताला की आवाज को सुन करके ना फिर वो अपने आप को होश में नहीं रख पाते, बल्कि वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेहोश होने से पहले पहले वो आवाजें इन तक पहुंच चुकी थी, फिर उनके ऊपर गशी तारी हुई, बेहोशी तारी हुई, और एक गिर गए, ठीक है। अब जब ये गिर गए ना, तो फिर क्या होता है? हाँ, फरिश्ते बेहोश तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बाद में भी जाके बेहोश होंगे, किस्सों भी बेहोश होते हैं, जब वो सूत फूकी जाएगी तो ये भी है कि फरिश्ते भी बेहोश हो जाएंगे।
हाँ,
तो उन्होंने आवाज नहीं सुनी थी, उन्होंने तो तजल्ली देख करके वो तो मर ही गए थे सारे के सारे, ठीक है। वो तजल्ली आई थी, वो आवाज नहीं आई थी, वो एक लाइक नूर आया था, ठीक है। तो उस नूर से फिर ये सारे के सारे मर गए अल्लाह ताला को देखने के लिए गए थे सर। अच्छा, तो फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद जो है ना, और ये देर से मुराद आसमानों वाली देर, हमारी दुनिया का टाइम फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी दुनिया का टाइम जो है आपके सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर 1 मिनट हो गया, फिर उसके बाद 1 घंटा हो गया, फिर दिन हो गया, ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट टाइम फ्रेम है। वहां का टाइम फ्रेम आसमानों का बिल्कुल डिफरेंट टाइम। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कुछ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वहां पर ना टाइम जो भी गुजरता है, उसके बाद जो फरिश्ते जो है ना वो जाग जाते हैं, वो बेहोशी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब वो बेहोशी से बाहर आ जाते हैं ना, तो फिर वो आपस में जो उनकी टीम होती है, जिसको के ऊपर से टास्क असाइन हुआ है, अल्लाह ताला की आवाज आई थी कि ये काम करो जा करके, तो वो फिर अपनी उन टीम मेंबर से फिर आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया था, या हमारे रब ने क्या हुक्म दिया था। तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, बेहोश होने से पहले ना ये वाली आवाज आई थी, ये वाला हुक्म आया था, ये ऐसे हुआ करने को कहा गया था, ठीक है। फिर वो एक दूसरे से ना इस पूरी बात को डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ताला का ये हुक्म था, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या था, फिर तो पहले तो वहां होता जिन कि अल्लाह ताला की आवाज सुनने का तो नहीं आया, कहीं हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो फरिश्तों की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की बात नहीं सुन रहे, ठीक है। तो तो अल्लाह ताला का समझना ऐसा कि भाई अल्लाह ताला की जो आवाज़ जिस फ्रीक्वेंसी में आती है ना, वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ फरिश्तों को समझ में आती है, लेकिन फरिश्ते जिस फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं, यानी जिस तरह से फरिश्ते बात करते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो वो फ्रीक्वेंसी जिन्नों को समझ में आती है। ठीक है, जब जमीन के अंदर प्लेट्स हिलती है ना, वो जो पहाड़ों की प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो उसकी जो आवाज क्रिएट होती है ना, उस आवाज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत जोर की आवाज क्रिएट होती है, लेकिन हमें वो आवाज आती नहीं है। किनको आवाज आती है पता है? गिनी पिग्स, रैट्स, माइस, चूहे, उनको उनकी आवाज आती है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये जो लैब्स होती हैं, लोगों ने, इंसानों ने, साइंटिस्ट ने लैब्स बनाई हुई है, जिन लैब्स के अंदर ना उन्होंने अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए होते हैं, कि जो अर्थक्वेक आया किसी जगह पर तो ऊपर जो लैब होगी ना, तो उसके अंदर सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं उनको, तो वो मेजर करते हैं कि जी ये कितने रेक्टर स्केल का जलजला था। उस लैब के अंदर उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट भी रखा होता है और साथ साथ उन्होंने चूहे भी रखे हुए, पता है, चूहे भी रखे हुए। क्यों? इसलिए कि अगर उनके इंस्ट्रूमेंट्स उस आवाज को कैच नहीं कर सके ना, चूहे तो डेफिनेटली कैच कर लेंगे। तो चूहे फिर जो है ना, जब जलजला आना शुरू होता है ना बिल्कुल, तो चूहे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और भागने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, अपने केजेस के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो वहां पे बैठे, उनको पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग हैज ऑलरेडी बिगन, हो चुका है कुछ स्टार्ट। ठीक है, तो फिर कॉल करते हैं कि अच्छा भाई आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप उसका ख्याल करें, आप उसका ख्याल करें। ऊपर तक ट्रेमर्स आने में टाइम लगता है, ये नीचे के ट्रेमर्स बहुत पहले शुरू हो चुके होते हैं, जिनको कि चूहों ने कैच कर लिया होता है। तो चूहे कैसे कैच करते हैं? वो आवाज जो क्रिएट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला ने चूहों की हेयरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके रखी है। ठीक है ना, यानी ये इस रेंज में आवाजों को सुन सकते हैं जिस रेंज में आवाज जो है वो पहाड़ों के नीचे से क्रिएट होती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी रखी है, हर कोई नहीं सुन सकता, जिसकी एबिलिटी है उस फ्रीक्वेंसी को सुनने की खाली वही सुन सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की आवाज फरिश्ते सुनते हैं, क्या जिन्नात हो सकता है, सुन सकता हूँ कुछ बताएंगे। तो फरिश्ते फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हुक्म आया था। जब वो क्लियर हो जाता है कि हुक्म क्या आया था, फिर उसके बाद जो है ना, वो फिर बाकायदा अपने ऑफिस के अंदर कोई टेबल चेयर होती होगी ऐसी, नीचे जमीन पर बैठे ऐसे ही बैठते होंगे, फिर वो बैठ करके प्लानिंग शुरू करते हैं कि इस हुक्म को अब हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है ना, इसके ऊपर अमल हमने कैसे करना है, ये पूरी प्लानिंग करते हैं बैठ कर। ठीक है, जब इनकी प्लानिंग मुकम्मल हो जाती है तो अब उसके बाद क्या करते हैं, अब जो है ना ये जाते हैं साइट एरिया पर, कस्टमर साइट में जाते हैं। यानी ये जो प्लानिंग को उन्होंने करना होता है, काम उन्होंने आसमान में तो थोड़ी करना होता है, अल्लाह ताला ने हुक्म को क्या दिया होता है, तुम जमीन पे जाकर के ये वाला काम करो। तो फरिश्तों के काम करने की जो एक्चुअल जगह है, जो साइट जिसको कहते हैं इंजीनियर लोग, वो है जमीन, प्लैनेट अर्थ। ठीक है ना, तो जब ये पूरी प्लानिंग ऊपर आसमानों में कर लेते हैं, अब ये नीचे जमीन में आते हैं और वहां पे आकर के एक्चुअली काम करते हैं। भाई किसी की जान निकालनी है तो मौत वाले फरिश्ते करते हैं, कहीं पे बारिश बरसानी है तो बारिश वाले फरिश्ते करते हैं, कहीं पे पहाड़ का कोई काम करना है तो पहाड़ वाले फरिश्ते करते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन जो है वो अल्लाह ताला ने जो बनाए ना, तो उन जिन्नों को जो है वो अल्लाह ताला ने कहां पे, अच्छा जिन बने कब, जिनको जिन्नों को अल्लाह ताला ने तख्लीक कब किया, इंसानों से हजारों साल पहले, यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को बना दिया। ठीक है, जिन्नों से बहुत पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बना दिया था। ठीक है, तो जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना, वो इस तरह से फरिश्ते, देन जिन, देन इंसान। ठीक है, बल्कि फरिश्ते और जिन, जिन के साथ साथ जो है वो आप एनिमल्स वगैरह को भी काउंट कर लें अगर, तो भी तकरीबन अराउंड द सेम टाइम। फिर उसके बाद हम तो सबसे आखिर में पैदा हुए, वी आर द यंगेस्ट, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। जी, क्या चीज? डायनासोर्स हमसे पहले पैदा हो चुके हैं। ठीक है, तो वो जिनों के साथ लगता है, वो डायनासोर भी तो देख कर कैसे लगता है ना, जिन है, जैसे वो टीरेक्स को देख करके नहीं लगता जिन है, खा जाएगा आकर के, उसको खून निकल रहा होता है उसके मुंह से। तो खैर, तो जिनों को अल्लाह ने पहले पैदा कर दिया था, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले। ये जो देर वाला मसला है ना, ये तो बाद में बात करेंगे। आपको बताया ना कि वहां का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, टाइम का जो फ्रेम है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। देर वेर का कोई मसला ही कोई नहीं है, ठीक है? तो उनके यहाँ बहुत देर, उनके हिसाब से देर लगती है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई टाइम नहीं गुजरा होता उस वक्त, ठीक है ना? ये इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो खैर, तो होता क्या था, नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले, नबी बनने से पहले, जिनों को अल्लाह ताला ने रखा तो दुनिया के अंदर था, लेकिन एज यू नो कि जिन जो है ना वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो वो दुनिया में भी उड़ उड़ करके बहुत हर जगह जा सकते हैं, और वो साथ साथ उड़ करके जो है ना वो आसमानों में भी जा सकते थे पहले, ठीक है? तो आसमानों में जाते थे, वहां पे क्या करते थे कि जो फरिश्तों को कमांड आई है, अब वो फरिश्ते बैठ के जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो जिन वहां पर कान लगा करके सुनते थे, कहीं छुप करके किसी बादल के पीछे कहीं पे, जहां पे फरिश्ते नजर नहीं आते थे, इनको देख नहीं सकते थे, ये छुप छुप करके फरिश्तों की बातें सुनते थे, इनको पता चल जाता था कि अच्छा ये वाला कमांड आई है, ये वाली बात आई है, और ये होने वाला है। अब जो है ना ये जल्दी से जमीन पर आते थे और अपने जो दोस्त होते थे जादूगर काहिन, उन लोगों को ना थोड़ी सी बात बता देते थे और ज्यादा झूठ बोलते थे, ठीक है? थोड़ा सा सच बताते थे और ज्यादा झूठ बताते थे, ठीक है? क्यों सच पूरा क्यों नहीं बताते थे काहिनों को, जादूगरों को पूरा सच क्यों नहीं बताते थे, झूठ क्यों उतना बोलते थे इनके साथ? वजह कोई बताएगा? काहिन और जादूगर, उनको ये झूठ, 99% झूठ और 1% सच, इस तरह से क्यों बताते थे? उसकी वजह ये होती थी कि जादूगर और काहिन जो होते थे ना, ये कौन होते थे? जिन नहीं, ये तो होते थे इंसान, और इंसान जो है वो चाहे जैसे भी हो, किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना? इंसानों को आदमी कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, और आदम अलैहिस्सलाम से है जिन्नों को दुश्मनी, ठीक है? गंदे जिन्हों को आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है, तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से कहां से दोस्ती हो जाएगी भाई? तो ये लोग काहिन और जादूगरों के साथ उन्होंने दोस्ती करी हुई होती है ना, ये झूठी दोस्ती होती है, ये सच्ची दोस्ती नहीं होती। ये चाहते हैं कि ये काहिन और जादूगर जो है ना, ये भी जहन्नुम में जाए, जिस तरह से कि हमने जहन्नुम में जाना है, ये भी जहन्नुम में जाए। तो इस वजह से झूठी झूठी बातें, गलत गलत बातें लोगों को बताते हैं और गंदे गंदे काम करवाते हैं इनसे, ताकि अल्लाह ताला से नाराज हो, तो सच बात ही बताते हैं इनको। शक के क्यों सुनते हैं? क्योंकि अगर फरिश्तों को पता चल जाएगा तो फरिश्ते जो है वो चुप हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, उनको नहीं पता चलेगा, तो चुप करके सुनते थे। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब, क्या ये थोड़ा सुन के आते हैं? क्योंकि थोड़ा सुन के आते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये पूरी बात तो सुनते नहीं है, बस थोड़ी सी सुनी और भाग गए, उचक करके भाग गए, ठीक है? तो अब जब बाकी स्टोरी जो है ना, ये अपनी तरफ से बना लेते हैं, झूठी स्टोरी बना लेते हैं, क्योंकि इनको तो खाली स्टोरी का छोटा सा हिस्सा पता है ना, बाकी झूठ बोल देते हैं इसके अंदर। लेकिन बहरहाल ये दोस्त नहीं होते जादूगरों का, बताते क्यों है? वो बताते इसलिए ताकि जादूगर और काहिन जो है वो फिर आगे से और झूठ बोले और जो है वो गंदे काम करें और उनको फिर गुनाह मिले और सजा मिले, इस वजह से बताते हैं। क्या किस चीज की? अब हाँ, अभी भी वो कुछ खैर ये आ रही है ना कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना दिया ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से, यानी इनको वही मिल गई आपसे सलाम को, तो उस वक्त नबी अल्लाह ताला ने क्या किया कि आसमानों के जो बॉर्डर्स थे ना, उन पर फिर अल्लाह ताला ने कुछ गार्ड फरिश्ते बिठा दिए, ऐसे फरिश्ते जिनका काम सिर्फ किया था कि वो, यानी उन्होंने चेक पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिए, क्या कहते हैं, चेक पोस्ट इस्टेब्लिश कर ली। चेक पोस्ट क्या होती है कि जब कोई गुजर रहा होता है ना चेक पोस्ट से, तो फिर वो चेक करते हैं कि अच्छा भाई आपके पास पास है गुजरने का, अगर आपके पास पास नहीं है तो आप नहीं गुजर सकते, पास है तब गुजरेंगे वरना नहीं गुजर सकते, ठीक है? और अगर कोई गुजरने की कोशिश करे जबरदस्ती, तो चेक पोस्ट के ऊपर जो है उन्होंने गन वाले बिठाए हुए होते हैं, वो गन से जो है वो मार लेंगे आपको, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने ना चेक पोस्ट बनवा दी, ठीक है? उन चेक पोस्ट के ऊपर अल्लाह ताला ने एक स्पेशल पूरा गार्ड फरिश्ते बिठा दिए, और उन गार्ड फरिश्तों के पास जो है वो इस किस्म की, यानी कुछ मिसाइल्स होते हैं, या तो वो एस्टेरॉइड्स की शक्ल में होते हैं, मीटरॉइड्स की शक्ल में होते हैं, जिस भी शक्ल में होते हैं, वो ऐसे आग के मिसाइल्स होते हैं कि जब कोई जिन आने की कोशिश करता है तो फरिश्ते, इन फरिश्तों का काम ही खाली जो है ना वो वॉच करना है। तो ये बहुत अटेंटिव होते हैं, वॉच करते रहते हैं, जैसे ही कोई जिन नजर आता है उसके ऊपर ये फायर करते हैं, तो उससे जो है ना वो जिन जल जाता है, थोड़ा बहुत जल जाता है, वो वापस रिट्रीट कर जाता है। ठीक है, तो ये शुरू हो गया नबी अलैहि सलाम की नबूवत के मिलते ही। लेकिन जिन्हों को पता नहीं था कि ये क्यों हो गया, उनको नहीं पता था। ठीक है, तो इन्होंने जब ये देखा ना कि यार थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमारा तो रास्ता खुला हुआ था, हम तो अपनी मर्जी से चले जाते थे आसमानों पे, कोई हमें नहीं रोकता था, कोई हमें नहीं मारता था, ये एकदम से क्या हो गया कि हमें अब मिसाइल मारना शुरू हो गए ये फरिश्ते, हमारे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। तो इन्होंने ना बाकायदा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जिन्स बुलवाई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सारी दुनिया के इस किस्म के जितने भी जिन थे ना, वो सारे के सारे जो जाहिर है बड़े बड़े लोग होते हैं वही कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सारे तो नहीं आते ना, बच्चे बच्चे तो नहीं कॉन्फ्रेंस में जाते। ठीक है, तो बड़े बड़े जिन्स जो है ना वो सारे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे और उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये क्यों हो गया ना। तो किसी को इसका जवाब मालूम नहीं था, जिनों में से किसी को नहीं पता था कि ये क्यों हुआ है। तो उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा ये डिसाइड किया कि अच्छा लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो अब उन्होंने ना फिर टीम्स बनाई, जिनों की टीम्स, जैसे सेवन जिन्स, नाइन जिन, टेन जिन, जो भी टीम्स बनाई, और उन टीम्स को बाकायदा डिस्पैच किया कि तुम टीम जो है ना वो तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, किसी को नॉर्थ में भेजा होगा, किसी को नॉर्थ ईस्ट में भेजा होगा, किसी को साउथ में, किसी को ईस्ट में, किसी को वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, राइट। तो इस तरह की टीम्स जो है वो पूरी दुनिया में फैला दी कि तुम लोग जाओ और जा करके देख करके आओ, तलाश करके आओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है कि जिसकी वजह से हमारा आसमानों में दाखिला बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जो नाइन जिन थे ना नखला के मुकाम के ऊपर, ये असल में उन टीम्स में से एक टीम थी जो कि इस तरफ असाइन हुए थे, अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, सरजमीन हिजाज की तरफ उनको भेजा गया था कि तुम यहां पे चेक करके आओ। ठीक है, तो ये लोग असल में ये क्या कहते हैं उसको, राखी के मिशन के ऊपर थे, इस तरह वो होते हैं फौज वाले। ठीक है, तो बहरहाल अब जब ये यहाँ पे थे और उधर से नबी अलैहि सलाम भी आ गए, तशरीफ ले आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी ना, तो इन्होंने जो नबी अलैहि सलाम की तिलावत सुनी ना, तो उसको सुनते ही इनको लग पता गया कि दिस इज द रीजन, ये है, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, है ना, ये एक अजीब कुरान है, अजीब तिलावत करने वाली किताब है जिसको इस तरह से ये तिलावत कर रहे हैं, हमने इसको सुना है, ये है असल वजह कि जिसकी वजह से अब आसमानों में दाखिला हमारा बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसकी मजीद तफसील इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में टाइम खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पे कैंट जिन, कैंट एंजल्स सी दैट द जिन्स आर टेलिंग मैजिशियंस अबाउट व्हाट दे हर्ड इन द स्काइज? नहीं, एंजल्स को हर चीज को थोड़ी पता होती है, हर चीज को थोड़ी एंजल्स देख रहे होते हैं, तो एंजल्स को सब पता नहीं होता कि क्या चीज जिन कर रहे हैं, क्या नहीं। जिनों वाला टाइम, हाँ, जिन चूंकि अर्थ में रहते हैं, ठीक है, प्लैनेट अर्थ, जमीन पे रहते हैं, तो जमीन का जो टाइम फ्रेम है वही इंसानों के लिए भी है, वही जिनों के लिए भी, वही जानवरों के लिए भी है। ठीक है, दोर से दोर से। तो उनको टाइम जाते थे तो, हाँ, जब आसमान में जाएंगे तो फिर तो चूंकि आपका आपका आपकी जगह चेंज हो गई है, तो फिर आपका टाइम फ्रेम भी उस जगह के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, आपको लोकेशन के हिसाब से। इनका नबी अलैहि सलाम का एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस में जाते हैं, वो आसमानों तक, अभी आसमान बहुत दूर है, आसमान तो है, एस्ट्रोनॉट से जा सकते हैं। ठीक है, या माशर जिन्नी, या नहीं, या माशर इंस, जिन्नी वल इंस, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا إلا بسلطان. تم نہیں جا سکتے یہاں سے باہر.
Thank you.